लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि दुख कष्टों और कठिनाइयों में पड़े सभी पीड़ितों को सहायता और एकात्मता प्राप्त हो। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में प्रस्तुत है रविवारीय आराधना विधि चिंतन भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तुत हैं फादर संजय दिलीप एक्का, सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की और सिस्टर अनुग्रह मिंज। श्रोताओ, हमें अपने जीवन से प्रेम है और अपने जीवन से प्रेम होने के कारण हम इसे सभी रूपों में बचाने की कोशिश करते हैं। यही कारण है कि हम अपने जीवन की परवाह करते और मानव के रूप में हम अपनी व्यक्तिगत हिफाजत करते और अपने को सुरक्षित रखने हेतु हर संभव कोशिश करते हैं। आज माता कलिसिया खजूर रविवार का त्योहार मनाती है। इस त्योहार को मनाते हुए हम इस बात की याद करते हैं कि यीशु एक राजा की भांति यरूशलेम के मंदिर, यरूशलेम के पवित्र सिंहासन में विराजमान होने हेतु प्रवेश करते हैं। इस परिदृश्य में हम उन्हें दुनियावी राजा के रूप में नहीं, वरन उस नम्र राजा के रूप में देखते हैं जिनकी मनोभावनाएं हर मानवीय सोच विचार से एकदम भिन्न है। यीशु ख्रिस्त अपने शान शौकत और ठाठ बाठ में नहीं, वरन एक साधारण एक लद्दू जानवर की सवारी करते हुए अपने पिता के दिए गए कार्यों के निर्वाहन हेतु पवित्र शहर यरूशलेम में कदम रखते हैं। खजूर रविवार में प्रवेश करने के साथ ही हम यीशु के संग अपने को यरूशलेम शहर में ले जाते और उनके दुख भोग और क्रूस मरण में शामिल होते हुए न केवल उनके पास्का की यादगारी मनाते, वरन हम स्वयं अपने पास्का की याद करते हैं जहां मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त ने अपने प्राणों की आहुति देकर हमें अनंत जीवन की सौगात प्रदान की है। आइए हम खजूर रविवार के आराधना विधि चिंतन हेतु लिए गए संत मत्ती के अनुसार यीशु के दुख भोग की कथा का एक छोटा अंश सुने, जहां यीशु ख्रिस्त हमें अपने को संपूर्ण रूप से अर्पित करते हैं, जिससे हम उनके ऊपर विश्वास करते हुए उसी अनंत जीवन के अधिकारी बन सकें, जिसे देने हेतु वे अपने को हमारे लिए अर्पित करते हैं।
संध्या हो जाने पर ईसा 12 शिष्यों के साथ भोजन करने बैठे। उनके भोजन करते समय ईसा ने कहा, मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, तुम में से ही एक मुझे पकड़वा देगा। वे बहुत उदास हो गए और एक एक करके उनसे पूछने लगे, प्रभु, कहीं वह मैं तो नहीं हूँ? ईसा ने उत्तर दिया, जो मेरे साथ थाली में खाता है वह मुझे पकड़वा देगा। मानव पुत्र तो चला जाता है जैसा कि उसके विषय में लिखा है, परंतु धिक्कार उस मनुष्य को जो मानव पुत्र को पकड़वाता है। उस मनुष्य के लिए कहीं अच्छा यही होता कि वह पैदा ही नहीं हुआ होता। ईसा के विश्वासघाती यूदस ने भी उनसे पूछा, गुरुवर, कहीं वह मैं तो नहीं हूँ? ईसा ने उसे उत्तर दिया, तुमने ठीक ही कहा। उनके भोजन करते समय ईसा ने रोटी ले ली और धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ने के बाद उसे तोड़ा और यह कहते हुए शिष्यों को दिया, ले लो और खाओ, यह मेरा शरीर है। तब उन्होंने प्याला लेकर धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ी और यह कहते हुए उसे शिष्यों को दिया, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरा रक्त है, विधान का रक्त, जो बहुतों की पाप क्षमा के लिए बहाया जा रहा है। मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, जब तक मैं अपने पिता के राज्य में तुम्हारे साथ नवीन रस न पी लूं, तब तक मैं दाख का यह रस फिर नहीं पीऊंगा।
श्रोताओ, सुसमाचार के सुमधुर वचन हमें यीशु ख्रिस्त को अपने जीवन में स्वीकार करने और उन पर विश्वास करने की कृपा प्रदान करे, जिससे हम उनके दुख भोग में अपने को पूर्ण रूपेण सम्मिलित कर सकें। श्रोताओ, यरूशलेम में जनता के नेताओं, फरीसी और सदूकी यीशु को मार डालने का षड्यंत्र रच रहे थे, और यीशु इन बातों से वाकिफ होते हुए भी, यह जानते हुए भी कि उनके शत्रु उन्हें मार डालने के फिराक में हैं, वे पवित्र शहर में प्रवेश करते हैं। यहाँ हम यीशु ख्रिस्त को उस जोखिम का साहस पूर्वक सामना करते हुए देखते हैं, जिस जोखिम से हम मानव के रूप में अपने को भागता हुआ पाते हैं। यह जानते हुए भी कि उनके जीवन को खतरा है, वे उस राह में आगे बढ़ते हैं जिसे उनके लिए निर्धारित किया गया था। यह हमें यीशु में अपने पिता के प्रति अगाध प्रेम, समर्पण और संपूर्ण आज्ञाकारिता को प्रकट करता है। इतना ही नहीं, यीशु का यह कार्य हम मानव के प्रति उनके अद्वितीय प्रेम और निष्ठा को भी अभिव्यक्त करता है। श्रोताओ, वहीं खजूर की डालियां जो उनके स्वागत हेतु यरूशलेम की राह में बिछाई गईं, हमें यरूशलेम में उनके ऊपर आने वाले घोर दुख और तकलीफों, कांटों से भरे कठिन राह की झलक प्रस्तुत करता है। नबी इसायस के ग्रंथ से लिया गया आज का पहला पाठ हमारे लिए दुखित ईश सेवक के कार्य और मनोभावों का जिक्र करता है। उन्होंने अपने जन सामान्य मानवीय जीवन में उनके लिए अपनी आवाज उठाई जो समाज में कई रूपों में थके मांदे थे। उन्होंने अंधों, लंगड़ों, बहरों, पापियों और समाज के हाशिए में रहने वालों को मुक्ति का संदेश देते हुए अपने पिता के प्रेममय राज्य की स्थापना की। इसका परिणाम यह हुआ कि वे सामाजिक और राजनैतिक नेताओं की आंखों के किरकिरी बन गए। उनके भले कार्यों हेतु उन पर झूठा दोष लगाया गया, उन्हें अपमानित किया गया, कई रूपों में उन्हें जलील करते हुए घोर यंत्रणाएं दी गईं। लेकिन उन्होंने अपने अपमान करने वालों और अपने शत्रुओं का विरोध नहीं किया, ना ही उन्होंने उनसे अपना मुंह छिपाया। वे अपने में घोर दुख और तकलीफों के बावजूद विचलित, हताश और निराश नहीं हुए, क्योंकि उन्होंने अपने पिता के प्रेम में अटूट विश्वास किया। श्रोताओ, फिलिपियों के नाम संत पौलुस के पत्र से लिया गया आज का दूसरा पाठ हमें यीशु का अपने पिता के प्रति निष्ठा और आज्ञाकारिता में बने रहने की बात कहता है। ईश पुत्र होते हुए भी उन्होंने दास का रूप धारण किया और अपने को दीनहीन बना लिया। इस तरह वे क्रूस मरण तक आज्ञाकारी बने रहे और पिता द्वारा मानव मुक्ति हेतु दिए गए अपने प्रेरित कार्यों को पूर्ण समर्पण में पूरा किया। अपने बेटे के इस आज्ञाकारिता और मुक्तिदायी कार्य हेतु पिता ने उन्हें महान बना दिया और वह नाम प्रदान किया जो सभी नामों में सर्वोच्च है। वहीं आज के सुसमाचार में हम यीशु के महान प्रेम की चर्चा सुनते हैं, जहां उन्होंने अपने को रोटी और दाखरस के रूप में परिणत करते हुए मानव जाति के लिए दे दिया, जिससे वे सदा हमारे साथ रह सकें, हमारे जीवन का अंग बन सकें। श्रोताओ, खजूर रविवार के तीनों पाठों का सार यदि देखा जाए और आज के ईश वचन संदेश का निचोड़ निकाला जाए, तो प्रभु आज हमें अपने जीवन की हकीकत से रूबरू कराते हैं। हमारे जीवन में तकलीफें हैं जिन्हें हम नकार नहीं सकते और ना ही हम उनसे दूर भाग सकते हैं। यीशु हमें अपने मुक्तिदायी कार्य में सहभागी होने हेतु बुलाते हैं, जो सत्य, निष्ठा और ईमानदारी के मार्ग में चलने का निमंत्रण है। यीशु का यह मार्ग निश्चित रूप में क्रूस का मार्ग है जो कांटों से भरा है। उनके संग यरूशलेम शहर में प्रवेश करना हमें अपने जीवन की मुसीबतों और तकलीफों का विश्वास में साहस पूर्वक सामना करने की मांग करता है। यह हमें अपने मुक्तिदाता की ओर निगाहें उठाते हुए उनके प्रति विश्वास में अडिग बने रहने का आह्वान करता है। आइए हम माता मरियम से निवेदन करें कि वे हमें नम्रता और दीनता में बने रहने की कृपा प्रदान करें, जिससे हम पुण्य सप्ताह की पवित्र अवधि में यीशु ख्रीस्त का अनुसरण करते हुए उनके पास का रहस्य में मिलने वाली अनंत खुशी का एहसास कर सकें।
क्रूस पे कुर्बानी यीशु तिहारी नए करार की, उसी में है मेरी नई जिंदगी। हे प्रभु महादानी, वचन सुनकर भक्ति से ध्यान धरे, आत्मा से प्रेरित होकर सुसंदेश प्रचार करे। ईश वचन सुनकर भक्ति से ध्यान धरे, आत्मा से प्रेरित।
आप वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। संत पापा फ्रांसिस ने शनिवार के ख्रिस्त्याग में उन लोगों के लिए प्रार्थना की जो संकट के समय से फायदा उठाने के प्रलोभन में पड़ते हैं। शनिवार को संत मार्था के प्रार्थनालय में मिस्सा शुरू करते हुए संत पापा ने कहा, इस अशांत कठिन और दुखद समय में कई लोग अनेक अच्छे काम कर सकते हैं, किंतु कुछ लोग अच्छा काम नहीं करने का विचार करते हैं जिससे कि वे परिस्थिति का फायदा उठा सकें। हम प्रार्थना करें कि प्रभु सभी लोगों को ईमानदार एवं पारदर्शी अंतःकरण प्रदान करें। अपने उपदेश में संत पापा ने आज के पाठों पर चिंतन करते हुए प्रलोभन किस तरह हमारे अंदर कार्य करता है इस पर प्रकाश डाला। संत पापा ने कहा कि प्रलोभन की शुरुआत बेचैनी से होती है। महायाजकों के लिए बेचैनी की शुरुआत संत योहन बपतिस्ता से हुई। बाद में यीशु आए, वे चिन्ह और चमत्कार करने लगे। सबसे बढ़कर वे लोगों से बातें करने लगे और लोग उन्हें समझने एवं उनका अनुसरण करने लगे, जबकि यीशु हमेशा संहिता के अनुसार नहीं चलते थे। इसने उन्हें बहुत अधिक बेचैन किया। तब वे उनकी जांच करना शुरू किए। वे कभी कभी उनके प्रज्ञापूर्ण जवाब से आश्चर्यचकित हुए, कई बार वे उससे अपमानित भी हुए। जब वे उन्हें नहीं पकड़ सके तो उन्होंने सैनिकों को उन्हें गिरफ्तार करने भेजा। संत पापा ने गौर किया कि अंततः महायाजकों ने यीशु से पीछा छुड़ाने का निर्णय लिया। इसके लिए उन्होंने अपने आप को न्याय संगत ठहराया। संत पापा ने इस बात पर गौर किया कि किस तरह यीशु के समय के नेताओं में जारी वह प्रक्रिया आज हम में प्रलोभन के रूप में कार्य करती है। यह एक छोटी इच्छा या विचार के रूप में उत्पन्न होती है जो धीरे धीरे बढ़ती, उसके बाद दूसरों को संक्रमित करती और अंत में अपने आप को न्याय संगत ठहराने लगती है। उन्होंने कहा कि इस प्रक्रिया के लिए एक औषधि है जिसके अनुसार हमें अपने अंदर इस प्रक्रिया को पहचानना है। यह प्रक्रिया किस तरह मेरे हृदय में उत्पन्न हुई, किनको मैंने संक्रमित किया और अंत में मैंने अपने आप को गिरने से बचाने के लिए किस तरह न्याय संगत ठहराया। उन्होंने प्रलोभन से बचने के लिए पवित्र आत्मा से प्रार्थना की। संत पापा फ्रांसिस ने 3 अप्रैल को एक वीडियो संदेश में विश्व के सभी ख्रिस्तों को संबोधित कर पुण्य सप्ताह को असाधारण तरीके से मनाने के लिए तैयारी करने हेतु प्रेरित किया। उन्होंने वीडियो संदेश में कहा, इस संध्या मुझे आपके घरों में प्रवेश करने का अवसर मिला है। यदि आप मुझे अनुमति देंगे तो मैं थोड़ी देर के लिए इस कठिन और दुखद समय में आपसे बातचीत करना चाहूंगा। मैं आपको अपने घरों में कल्पना कर सकता हूँ जो संक्रमण से बचते हुए एक खास तरह की जिंदगी जी रहे हैं। उसके बाद संत पापा ने परिवार के बच्चों, युवाओं, बुजुर्गों, कैदियों और एकाकी में रह रहे लोगों की याद की। उन्होंने उनको भी नहीं छोड़ा जो कोरोना वायरस से बीमार हैं और अस्पतालों में हैं, तथा उन सभी लोगों की उदारता की सराहना की जो इस महामारी के इलाज अथवा समाज में मौलिक सेवाओं की गारंटी देने के लिए अपने आप को जोखिम में डाल रहे हैं। पुण्य सप्ताह को मनाने की तैयारी हेतु सलाह देते हुए उन्होंने कहा कि पुण्य सप्ताह जो सुसमाचार का संदेश प्रकट करता है, हमारे शहरों के मौन में पास्का का सुसमाचार गूंजेगा।
संयुक्त राज्य के कैथोलिक धर्माध्यक्ष सम्मेलन के अध्यक्ष एवं लॉस एंजल्स के महाधर्माध्यक्ष जोस गोमेस ने विश्वासियों को पवित्र शुक्रवार 10 अप्रैल को प्रार्थना में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है ताकि यीशु के पवित्र हृदय की लिटनी प्रार्थना की जा सके। संयुक्त राज्य कैथोलिक धर्माध्यक्ष सम्मेलन मीडिया के सलाहकार के अनुसार एक राष्ट्र के रूप में प्रार्थना करते हुए हम उन सभी के लिए चंगाई चाहते हैं जो अस्वस्थ हैं, उन लोगों के लिए ज्ञान चाहते हैं जो कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए काम कर रहे हैं। ईश्वर अपने सभी बच्चों को इस महामारी से उबरने की शक्ति दे। पवित्र शुक्रवार को पूरे विश्व के ख्रिस्तीय यीशु मसीह के दुखभोग और क्रूस पर मृत्यु की यादगारी में एकत्रित होते हैं। मानव जाति के प्रेम की खातिर यीशु के आत्म बलिदान की याद में कैथोलिक परंपरागत अनुसार इस दिन को उपवास, तपस्या और प्रार्थना में बिताते हैं। कोरोना वायरस महामारी के कारण संयुक्त राष्ट्र और विश्व के ख्रिस्तीय पवित्र सप्ताह की धर्म विधियों और पास्का महोत्सव में सामूहिक रूप से भाग नहीं ले सकते हैं। USCCB ने यह भी घोषणा की है कि परम धर्म पीठ के प्रेरितिक दंड मोचन समिति द्वारा विशेष अनुमति प्राप्त है कि मीडिया संचार के माध्यम से पवित्र शुक्रवार को महाधर्माध्यक्ष गोमेस की अगुवाई में यीशु के पवित्र हृदय की लिटनी प्रार्थना में भाग लेने वाले सभी इच्छुक विश्वासियों को दंड मोचन प्राप्त होगा। उधर कोरोना वायरस महामारी के कारण राष्ट्रव्यापी तालाबंदी में एक कैथोलिक स्कूल दिल्ली के प्रवासियों, निराश्रितों और बुजुर्गों को खाना खिला रहा है। उत्तरी दिल्ली जिले के नरेला में रोजरी स्कूल के प्रिंसिपल फादर साबरी राज ने 30 मार्च को व्हाट्सएप में प्राप्त संदेशों और हताश लोगों द्वारा फोन पर मांग की जाने पर भूखों को खिलाना शुरू किया। फादर साबरी राज ने मैटर्स इंडिया को बताया कि उन्होंने जूम ऐप पर स्कूल के शिक्षण कर्मचारियों की एक बैठक बुलाई और उनसे राशन दान करने की अपील की। सभी ने सकारात्मक उदारता और स्वेच्छा से जवाब दिया। इस बीच फादर साबरी राज ने किराने का सामान वितरित करने की अनुमति लेने के लिए स्थानीय पुलिस स्टेशन के स्टेशन हाउस कार्यालय से संपर्क किया और SHO से लिखित अनुमति मांगी। 3 अप्रैल को फादर साबरी राज ने अपने एक कर्मचारी प्रताप के साथ मिलकर गरीब और जरूरतमंद लोगों के बीच राशन और भोजन वितरित किया। उन्होंने दिल्ली उत्तर प्रदेश की सीमा पर स्थित फिलोमिना पैराडाइज वृद्धाश्रम में भी खाद्य सामग्री पहुंचाई। फादर साबरी राज ने उम्मीद जताई कि उनके छोटे उदार कार्य आने वाले दिनों में अधिक लोगों को उदार बनने के लिए प्रभावित करेगा। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।